नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
कार्यक्रम में तीसरा अध्याय कर्मयोग, जिसे हम प्रारंभ किए पिछले बुधवार, जहां भगवान अब प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरा अध्याय सुनाने के पश्चात कि अर्जुन या तो गांडीव उठाकर युद्ध करें या फिर और कोई प्रश्न उसे हैं तो पूछे। तो भगवान अंदरूनी तौर पर जानते थे कि प्रश्न अर्जुन के हैं, और एक वैष्णवाचार्य इस प्रकार से टीका लिखते हैं कि भगवान दूसरे अध्याय में इतना कुछ सुनाए कि भगवान अर्जुन से और प्रश्न उगलवाना चाहते थे, कि और प्रश्न पूछो अर्जुन। इसलिए ये जो दूसरा अध्याय है, जिसके अंदर कर्मकांड, कर्म योग, बुद्धि योग, और फिर कैसे कोई उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकता है और भगवान के धाम तक पहुंच सकता है, तो ये बहुत ही ज्यादा उसको हम बोल सकते हैं कि भगवान ने एक ही अध्याय में अर्जुन को बहुत बड़ा डोज दिया, ताकि अब भगवान सिस्टमैटिकली जो कुछ भगवान ने अभी सुनाया दूसरे अध्याय में, उसे सिस्टमैटिकली अब तीसरे अध्याय से अर्जुन के प्रश्नों के द्वारा सुनाए। श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में यही लिखते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने एक मुद्दा लिया था कि अर्जुन ने जो कुछ सुना दूसरे अध्याय में, और दूसरे अध्याय में सुनने के पश्चात फिर अर्जुन अब तीसरे अध्याय के प्रारंभ में जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं इस दुविधा स्थिति में फिर पड़ चुका हूं कि ये बुद्धि योग और ये जो युद्ध लड़ना, ये कर्म योग, ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो हमने ये दो प्रकार की लिसनिंग पर चर्चा किया था। एक तो अर्जुन के मन में, क्योंकि उन्होंने एक प्रस्ताव सामने रखा था भगवान के, प्रस्ताव ये था कि युद्ध नहीं लड़ना है मुझे, ये अर्जुन का प्रस्ताव था। तो क्योंकि जब कोई प्रस्ताव सामने रखकर प्रश्न पूछता है तो उसका जो लिसनिंग होता है वो काफी सिलेक्टेड होता है, चुनिंदा लिसनिंग होता है उसका, क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशंस बस उसी आंसर के ऊपर केंद्रित रहते हैं। लेकिन वो उस कंटेक्स्ट को नहीं जानता जिस कंटेक्स्ट में या जिस संदर्भ में, कंटेक्स्ट का अर्थ है संदर्भ में, वो आंसर दिया जाएगा। इसलिए अर्जुन के मन में वो हावी था, क्या वो प्रस्ताव उनका युद्ध नहीं लड़ना है। He was possessed, obsessed by not fighting. Therefore, he was not able to focus in what context Krishna was speaking buddhi yog or even going back to Godhead or Brahmi sthiti and all. तो अब हम जो पहला श्लोक हमने लिया पिछले हफ्ते, उससे आज के श्लोक का संबंध पहले देखेंगे। अर्जुन की दुविधा एक दृष्टिकोण से भगवान ने बढ़ा दी, लेकिन वो दुविधा किस प्रकार की बढ़ी अर्जुन की, उसके लेवल बढ़ा, क्वालिटी बढ़ा उसका। तो इसमें आप देखोगे कि जब अर्जुन की दुविधा की क्वालिटी बढ़ी, तो उसके साथ साथ अर्जुन के जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो भी बढ़ी। तो अभी इस पर हम गौर करेंगे कि अर्जुन ये जो दो श्लोकों में प्रश्न पूछे, ये जो श्लोक पिछली बार हमने लिया, इसमें अर्जुन का ये प्रश्न था, आप मुझे फिर इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, यदि जब आपने ही कहा दूसरे अध्याय में दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कि दूर रखो घोर कर्मों को और बुद्धि योग में स्थित हो हे धनंजय। तो इसमें यह समझना है हमें कि अर्जुन जो पिछले अध्याय में प्रश्न पूछे थे, अगर इसका एनालिसिस हम करें और ये तीसरे अध्याय में जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, तो क्वालिटी क्वेश्चंस का क्वालिटी इंप्रूव हो गया अर्जुन का। एंड दिस इज द साइन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। तो आप पूछोगे तो फिर आज का जो श्लोक हमने आप लेने वाले हैं, तो उसमें क्या पिछले श्लोक के क्वेश्चन के कंपैरिजन में आज के श्लोक का जो क्वेश्चन है उसका कुछ क्वालिटी इंप्रूव हुआ है? डेफिनेटली दोनों श्लोक में आप देखोगे अंतर कि कैसे क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। तो वहां तक पिछले श्लोक तक अर्जुन का प्रश्न उस दुविधा को लेकर था कि क्या श्रेष्ठ है, थोड़ा कंफ्यूज उसमें थे, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन का पिछले अध्याय से या पहले अध्याय से इंप्रूव्ड था। और आज के श्लोक में हम देखेंगे, जिसके कहते हैं ना कि बुल्जाय, हिटिंग द बुल्जाय, तो अर्जुन ने सीधा वो लेवल से इतने ऊपर लेवल तक पहुंच गए अपने क्वेश्चंस में, मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है आप शुरू कीजिए बताना, अल्टीमेटली व्हाट इज बेनिफिशियल, श्रेयस्कर। श्रेयस्कर का इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रभुपाद करते हैं, व्हाट इज अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर मी, काइंडली स्पीक दैट ओ कृष्ण। आपको समझ में आ रहा है, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंट लेवल्स है। तो हम पहले श्लोक का पूरा अनुवाद समझेंगे और फिर एक एक कर उसमें क्या सिद्धांत हमारे आचार्य दिए हैं समझेंगे। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन प्रश्न जारी रखे हैं पिछले श्लोक को लेते हुए। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आपने जो व्यामिश्रेणेव वाक्य कहा है, व्यामिश्रेणेव का अर्थ है जिस एक वाक्य के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे कि कल, हिंदी का एक वर्ड अगर हम लेंगे कल, तो आप क्या समझे कल का अर्थ क्या हुआ, है ना? दो अर्थ हो गए ना कल के, तो इसे कहते हैं व्यामिश्रेणेव। कि एक वाक्य या एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो इसलिए हमने पिछली बार क्या लिया था, कॉन्टेक्स्चुअल। अभी अगर मैं आपको कोई कॉन्टेक्स्ट का स्टेटमेंट बोलूंगा कल वर्ड यूज करके, तब आपको समझ में आएगा कि मैं टुमारो बोल रहा हूं या यस्टरडे बोल रहा हूं। कल मैं वहां पर गया था, कल मैं वहां पर जाऊंगा, समझ गया? इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्चुअल लिसनिंग। तो अब यहां पर अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो बुद्धि योग अलग अलग टर्म्स सेकंड चैप्टर में जो भगवान ने यूज किया है, तो उसमें कौन से अर्थ को कौन से संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में मैं समझू। इसलिए व्यामिश्रेणेव वाक्येन, हे भगवान, आपके ये जो इक्विवोकल लैंग्वेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसके वजह से बुद्धिम मोहय सीव में, मेरी जो बुद्धि है वो मोहित हो रही है, भ्रमित हो रही, मतलब इसलिए तदेकम वद निश्चित्य, कि आप निश्चित रूप से अब बताओ मुझे एक चीज, कौन सी चीज, ये न श्रेय अहम आपनुयाम, कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है, सिंपल लैंग्वेज में ये बताओ। तो इसका पूरा अनुवाद इस प्रकार से है, अर्जुन ने कहा, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। जैसे कई बार आप कुछ खरीदने जाते हो कहीं पे, कुछ कपड़े खरीदने गए, तो होता ना वो दुकान में सब कितने सारे दिखा देता है खोल खोल के, अच्छा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये सिल्क है, ये टेरिकॉट है, ये इसका ये रेट है, इसका ये कलर है, ये यहां से आया है, वहां से आया है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बेस्ट क्या है इसमें से बताओ, और सस्ता कौन सा वो भी बताओ। तो वैसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि बुद्धि मोह सीव में, कि मेरी बुद्धि इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम जो मुद्दा लिए थे, क्योंकि अर्जुन आज के श्लोक में बुद्धि ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि अर्जुन की बुद्धि अब मोहित हो रही है, लेकिन हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन ठीक है, वो उनकी नम्रता है कि वो भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को कि मैं मोहित बुद्धि से आपके सामने खड़ा हूं। नहीं, हमें क्या समझना है कि अर्जुन के प्रश्नों पर हम गौर करें तो अर्जुन का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। तो एक मनुष्य, शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य का इंटेलिजेंस लेवल कैसे चेक किया जाए, शास्त्रों के अनुसार, ध्यान में रखिएगा, शास्त्रों के अनुसार आईक्यू, उसका इंटेलिजेंस कोशेंट कैसे चेक होता है, वो अपने जीवन में क्या लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, उसी से डिसाइड हो जाता है कि वो मनुष्य है कि नहीं। सबसे पहले मनुष्य में कितना एडवांसमेंट किया है वो तो अलग स्टोरी है, लेकिन वो मनुष्य है कि नहीं। जैसे कि आपने इस्कॉन के प्रवचनों में सुना होगा कि वेदांत सूत्र का पहला सूत्र क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो का अर्थ है अब जो आपको ये मनुष्य देह मिला है तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, मनुष्य देह मिलते ही फर्स्ट थिंग व्हाट दिस ह्यूमन फॉर्म शुड बी डूइंग, ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करनी है, क्वेश्चन। जिज्ञासा का अर्थ है क्वेस्ट या क्वेश्चन, लेकिन किसके संदर्भ में, जो पिछली योनियों में प्रश्न पूछते आए हम, वो प्रश्न नहीं पूछने कि कहां खाने को मिलेगा, कहां सोने को मिलेगा, कहां अपनी सुरक्षा इत्यादि, नहीं, ये सब प्रश्न ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायरिंग अबाउट दी एब्सोल्यूट श्रेय जो अर्जुन यहां पूछ रहे हैं आज, अल्टीमेट बेनिफिट क्या है मेरा। तो मुझे याद आ रहा है जयपताक महाराज एक बार बहुत वर्षों पहले चौपाटी मंदिर में आए, तो वो एक इंसिडेंट बता रहे थे। जयपताक महाराज जो कि मायापुर बंगाल वहां पे इतना प्रचार करते हैं, बंगाली भी जानते हैं, फ्लुएंटली बंगाली में लेक्चर भी दे सकते हो, हालांकि हैं वो अमेरिकन, तो वो मायापुर मंदिर के लिए कुछ पब्लिश कर रहे थे, कुछ सविनियर्स वगैरह। तो मायापुर से कलकत्ता आए थे वो पब्लिशिंग हाउस में जहां पे प्रिंटिंग वगैरह हो रहा था, तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो प्रिंटिंग प्रेस में बहुत कुछ प्रिंट होता रहता है, तो जो इस्कॉन का जो पब्लिकेशंस अब प्रिंट होने वाला था उसके पहले एक स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट हो रहे थे। ये अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है या हो गया, तो क्वेश्चंस प्रिंट हो रहे थे, तो उन्होंने देखा, बंगाली में था लेकिन वो बंगाली पढ़ सकते थे, जान सकते थे, तो क्वेश्चन था, ये स्कूल में क्वेश्चन पूछा गया, तोमार की परिचय, समझ गया, आपका इंट्रोडक्शन परिचय लिखिए। तो वो जाके जो उस क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करने के लिए स्कूल के स्टाफ आए थे, तो उनको जाके उन्होंने पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो विद्यार्थियों से, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट काइंड ऑफ आंसर, तुम्हार की परिचय। बोले आई एम इंडियन, आई एम बंगाली, ये सब आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। तो जयपताक महाराज ने पूछा, अगर कोई ऐसा लिखे आमी कृष्णदास और आई एम अ स्पिरिट सोल, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, अगर ये आंसर कोई लिखे तो कितना मार्क्स मिलेगा उसको। उन्होंने कहा जीरो। तो वो लेक्चर में बोल रहे थे, ये हमारा एजुकेशन का हाल है कि जो हमारा असली परिचय है वो हम यदि लिखें तो जीरो मार्क्स मिलने वाले हैं, और ये सब कुछ जहां पैदा हुए वो सब परिचय, कौन से प्रांत में, कौन से देश में, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब हम लोग ने यहां पे अपनाए हैं, ये सब, जैसे कि वो कह रहे थे, हम लोग ये सिंपल एग्जांपल देते हैं, यदि कोई पूछे कि मेरा परिचय क्या है, मैं कहूं कि ऑरेंज शर्ट, तो ये तो मैंने अपनाया है, तो पहना हुआ है, ये मेरा परिचय नहीं, ये मैं नहीं हूं। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आंसर्स तो छोड़ दीजिए, पहले क्वेश्चंस, स्क्रिप्चर्स हमको कहां पकड़ लेते हैं, आप क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो अभी। तो क्यों वेदांत सूत्र का जो पहला सूत्र ये है कि अब आप ब्रह्म जिज्ञासा कीजिए, क्योंकि इस मनुष्य देह में हमें, हमारे अंदर बायोलॉजिकली वो इंटेलिजेंस फिट किया हुआ है। किसने? प्रकृति ने। कौन सा इंटेलिजेंस? कि हम ये प्रश्न पूछ सके कि मेरा असली परिचय क्या है, ब्रह्म कौन है, मैं इस भौतिक संसार में क्यों दुख भोग रहा हूं जब मुझे दुख नहीं चाहिए, क्यों मुझे सुख नहीं मिल रहा जब मुझे सुख चाहिए। ये हमारे अंदर, जैसे कोई मशीन कंप्यूटर आता है ना, उसके अंदर सब एप्लीकेशंस ऑलरेडी प्रोग्राम्ड रहते हैं, वैसे ये हमारा जो बॉडी है उसके अंदर ये इंटेलिजेंट क्वेश्चनिंग का जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी फिट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। कौन से एप्लीकेशन को? इंटेलिजेंट आस्किंग क्वेश्चंस के एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? वही ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, कि उसको सोफिस्टिकेटेड बनाने की कोशिश कर। तो आज एक छोटा सा आईक्यू टेस्ट हम अपना लेंगे, देखते हैं शास्त्र के अनुसार हमारा ये कोशेंट कितना है, इंटेलिजेंस कोशेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि यदि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, कैन यू टच दिस सीलिंग, कैन यू टच दिस सीलिंग, तो क्या आपका रिएक्शन रहेगा? हाउ विल यू आंसर? यस, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई बहुत रियली अपने इंटेलिजेंस लेवल में थोड़ा प्रगत हुआ है तो वो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। टच करने से पहले व्हाई, है ना? अब देखिए, डोंट टेक एनी ऑफेंस, लेकिन अब जैसे कोई पेट डॉग होता है, कोई कुत्ता होता है, तो कुत्ते को आप जाओ बोलो मोती न्यूज़पेपर लेके आओ, है ना? ठीक है, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा वाय, उसको सिखाया गया है, उसको क्या दिख रहा है, मैं न्यूज़पेपर लेके आता हूं मेरे को बिस्किट मिलता है ना? तो उसको जब बोलते हैं छू लेके आने, उस पर भाग भाग के जाएगा, चाहे वो कल का हो चाहे परसों का हो, उसको मतलब नहीं, वो ही नहीं मुझे, अरे ये तो कल का है यार, कल का क्यों पढ़ रहे आप? क्योंकि उसके अंदर वो इंटेलिजेंस फिटेड नहीं है। तो यहां पे देखिए कैसे शास्त्र हमें पकड़ते हैं, हमारा लेवल कौन सा है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि कैन यू टच दिस सीलिंग, तो एक इंटेलिजेंट आदमी सबसे पहले क्या पूछेगा, पहले बताओ व्हाई, पर्पस क्या है? डेफिनेटली आई कैन डू दैट, बट व्हाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू अर्न रुपीज 10 crore? हम लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं? हाउ, अभी नहीं पूछेंगे व्हाई, है ना? यहां पे देखो पकड़ लिया हमको। यदि कोई अभी कोई अगर ये क्वेश्चन पूछता है व्हाई, तो उसको पागल कहा जाता है कि ये साला मूर्ख है, है ना? अरे 10 crore rupees क्यों कमाएगा, ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की 10 crore ही क्यों? तो शास्त्र हमको एक अलग पर्सपेक्टिव हमारे इंटेलिजेंस के सामने प्रस्तुत करता है कि हमको कहां पर वाई क्वेश्चन पूछना है, कहां पर हाउ पूछना है। हम लोग उल्टा करते हैं। अभी यहां पर इधर वाई पूछना चाहिए हमको कि क्यों मैं वो कमाऊं। जैसे कि ऊपर हमको एक्सपेक्टेड था कि हम ये पूछें कि क्यों मैं इसको टच करूं, वैसे हर चीज का पहले पर्पस जानना है एंड देन हाउ। ओके, और कुछ प्रश्न है? जैसे कि कोई आपके मित्र आपको फोन पे कहें, कैन यू कम होम फॉर अ पार्टी, व्हेन, है ना? एक स्वाभाविक क्वेश्चन होता है, व्हेन? अरे भाई पार्टी घर में बुला रहे, मतलब एक तो सब पार्टी मतलब अच्छा खाना पीना रहेगा और कुछ बिल बिल भी नहीं भरना है फिर तो, बताओ बताओ व्हेन व्हेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू कम टू टेम्पल फॉर चैंटिंग, बहुत रेयरली कोई होता है जो पूछेगा व्हेन। तो यहां पर तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमारा एक बहुत प्राइवेट एनालिसिस हम कर सकते हैं कि हमारा इंटेलिजेंस लेवल कहां तक पहुंचा है। हालांकि आजकल तो लोग ये हम लोग जो क्वेश्चंस लिए हैं कुछ दो चार, ये तो बहुत रिफाइंड क्वेश्चंस हैं। आजकल तो पता नहीं एजुकेशनल सिस्टम में भी, जैसे मुझे एक व्यक्ति ने एसएमएस भेजा, एक टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है दैट राजू इफ ऑन अ मैंगो ट्री यू प्लक 6 बनानास फ्रॉम अ मैंगो ट्री देन हाउ मेनी ऑरेंजेस विल यू हैव। एक आम के वृक्ष से तुम यदि 6 केले तोड़ोगे तो कितने संतरे तुम्हारे पास होंगे। अभी ऐसा बेहुदा प्रश्न तो उसका उत्तर भी बेहुदा, वो बोलता है 6 हाथी मिलेंगे मुझे। तो वो पीठ थपथपा रहा, बहुत अच्छा आंसर। कैसे आंसर दिया? क्योंकि आज मैंने डब्बे में मेथी की सब्जी लाई और फिर डॉट 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 इससे बकवास मैसेज भेज के देखो। तो यही है आजकल। एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि आजकल ये सब चीज बहुत पॉपुलर हो रहा है कि लोगों के पास कुछ बोलने के लिए, कहने के लिए नहीं, गाने के लिए नहीं, तो ऐसे ही गाने शुरू कर देते। व्हाई दिस? कोल्हापुरी। तो अभी मेरे को जब ये व्यक्ति बताया है कि आपको मालूम नहीं ये बहुत पॉपुलर आजकल एक गाना हुआ है, तो मैंने कहा उसका आंसर क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है तो आंसर क्या है उसका? बोला आंसर किसी को नहीं मालूम। बोला फिर क्वेश्चन का मतलब? क्वेश्चन भी किसी को नहीं मालूम। तो सोचिए कहां वेदांत सूत्र कहते हैं अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां तो भयंकर जिज्ञासाएं हो रही है। तो अर्जुन जब यहां पर दिखा, अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि लेवल क्वेश्चंस का क्या होना चाहिए, वहां से डिसाइड होता है कि हम हमारे मनुष्य जीवन में प्रगति कितना कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो हम सुनते हैं मोस्ट डेडली डिजीज, इसका एक और फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इंटेलिजेंस डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि जब हमारा इंटेलिजेंस क्वोशेंट जाता है नीचे, तो ये एड्स की बीमारी और बाकी कोई भी बीमारी आप लो, चाहे मानसिक स्तर पर या शारीरिक स्तर पर, ये सारी बीमारियों की उपज कहां से है? जब हम हमारी जो एक्चुअल इंटेलिजेंस है उसको यूज नहीं करते या उसको मिसयूज करते। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, और श्रील प्रभुपाद उसका ट्रांसलेशन करते हैं कि मनुष्य समाज में ये कृति, कृति का अर्थ होता है इंटेलिजेंस, और दुष्कृति और सुकृति ये दो चीज। सो वन इज मेरिटोरियस इंटेलिजेंस विच इज सुकृति, अनमेरिटोरियस इंटेलिजेंस विच इज दुष्कृति। तो जैसे पहले लोग, आप देखो चोर उचक्के होते थे, उनकी फोटोएं देखो आप, हाँ कहीं पुलिस स्टेशन में लगाई जाती थी, तो कैसे दिखते वो एकदम पिक पॉकेटर और ये सब। और आजकल पेपरों में जो बड़े बड़े लेवल पर चोरी करते हैं एकदम सूट टाई पहने हुए, तो ये नहीं कि उनके अंदर वो कृति या इंटेलिजेंस नहीं है। वही पिक पॉकेटर अब कंप्यूटर सीख गया तो वो जेब काटता नहीं अभी किसी का, वो सीधा बैंक में बस मनी ट्रांसफर उससे कर देता है, काम वही कर रहा है, जेब भी काट रहा है, लेकिन अभी सोफिस्टिकेटेड तरीके से करता है, पहले एकदम ग्रोस तरीके से लेकिन अभी सोफिस्टिकेटेड तरीके से करता है। तो वैसे ही जब कोई अपने जिसको बोलते हैं ना गॉड गिवन इंटेलिजेंस, ये गॉड गिवन इंटेलिजेंस क्या है, जब हम ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ करें और वही गॉड गिवन इंटेलिजेंस उस सॉफ्टवेयर को हम मिसयूज करेंगे, जैसे ये चोर उच्चक टेररिस्ट वगैरह करते क्या है, सॉफ्टवेयर वही है लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव अलग तरीके से उसको यूज किया गया। तो वैसे ही हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर भगवान ने ये जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन का सॉफ्टवेयर दिया है वो सबके अंदर वही है कि हम ब्रह्म जिज्ञासा करके कैसे जो अपना परम सर्वाधिक श्रेय है उसको प्राप्त करें, जो अर्जुन यहां पूछ रहे हैं, लेकिन उसको छोड़कर हम लगे रहते हैं कितने अन्य कामों में। तो ये आजकल लोग इसके विषय में, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, इसकी चर्चा करते हैं, पहले केवल आईक्यू की चर्चा किया करते थे। आपको यदि याद है पहले खाली ये चेक किया जाता था कि उस व्यक्ति का आईक्यू कितना है, उसके अनुसार उसको जॉब दिया जाए इत्यादि। आजकल केवल आईक्यू नहीं, ईक्यू शुरू हुआ है कि उसका इमोशनल क्वोशेंट कितना है, क्योंकि अगर उसके अंदर इमोशनल क्वोशेंट नहीं है, उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, तो हमारा दिल से काम नहीं करेगा। यहां पर खाली बुद्धि से नहीं, दिल से भी काम करना है उसको। तो इमोशनल क्वोशेंट क्यों आजकल लोग जो भी वर्क प्लेस है उसमें काउंट करते हैं, बिकॉज इमोशनल क्वोशेंट डिसाइड्स योर लॉयल्टी। अ पर्सन माइट बी इंटेलिजेंट बट माइट नॉट बी लॉयल, बट अ पर्सन हु वर्क्स फ्रॉम द हार्ट एंड ऑल्सो द हेड, हेड एंड हार्ट विल हैव द इंटेलिजेंस एंड लॉयल्टी बोथ। इसलिए अमेरिका में यदि वो लोग देते हैं जॉब, फर्स्ट प्रेफरेंस किसका होता है, इंडियंस को देते हैं वो लोग। बहुत इंपॉर्टेंट जॉब पोर्टफोलियोस अमेरिका में पहला प्रेफरेंस इंडियंस को होता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये लोग दिल से काम करते हैं एंड दे आर लॉयल टू देयर जॉब। सेकेंड चाइनीज, और फिर कोई नहीं मिले तो फिर वो अमेरिकन को लगाते हैं। हमारे देवामृत स्वामी एक लेक्चर में बता रहे थे कि ये उनका सर्वे वहां का। लेकिन इससे भी ऊपर आजकल वो लोग चर्चा किसका कर रहे हैं, एसक्यू, द स्पिरिचुअल क्वोशेंट ऑफ योर इंटेलिजेंस विच इज बेनिफिशियल नॉट जस्ट टू द इंडिविजुअल, नॉट जस्ट टू द कंपनी, बट टू द सोसाइटी एट लार्ज, उसकी फैमिली, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, सोसाइटी, नेशन वाइड, ग्लोबली, जब उसका स्पिरिचुअल क्वोशेंट शार्प होगा। तो आजकल ये सब डिस्कशन में आ रहा है, उनके सब मैनेजमेंट गुरु ये सब डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज स्पिरिचुअल क्वोशेंट विल डिसाइड हिज लाइफ विच विल बी हेल्दी बॉडी थ्रू द बॉडी थ्रू द माइंड एंड ऑफकोर्स द सोल। तो ये यहां पर अर्जुन, सोचिए हम लोग भगवद्गीता का एक श्लोक ले रहे हैं जिसके अंदर अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है, उसमें हमको ये ज्ञान मिल रहा है कि अर्जुन का स्पिरिचुअल क्वोशेंट, इंटेलिजेंट क्वोशेंट तो छोड़ दीजिए, स्पिरिचुअल क्वोशेंट कितना है, जो कि आजकल लोग जिसकी नेसेसिटी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसलिए आज के श्लोक से हमको क्या सीखना है, सबसे पहले अर्जुन के एग्जाम्पल से ये सीखना है कि मेरा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का एडवांसमेंट मैं कैसे चेक करूं कि मेरे क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्या मैं क्वेश्चंस आजकल पूछ रहा हूं, जैसे कि व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये सब किसके संदर्भ में मेरे अंदर का मोटिवेशंस क्या है। फिर ये न श्रेय अहम आपनुयाम, जिसका अर्थ है सर्वाधिक श्रेयस्कर। तो जो लास्ट लाइन में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप मेरे को बस एक चीज बताओ कि मेरे लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल क्या है, सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। तो श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में, इसी श्लोक के प्रवचन में लॉस एंजलिस में कह रहे थे कि जो मानवी कर्म है हमारे वो दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रेयस और एक है श्रेयस। जैसे आज के श्लोक में श्रेयस के विषय में अर्जुन पूछ रहे, तो इसका ठीक विपरीत है प्रेयस। प्रभुपाद कहते हैं जिसका अर्थ है प्रेयस मतलब तुरंत जिसके अंदर सुख मिलता है, तुरंत सुखकारी, इंस्टेंट इंस्टेंट सब कुछ मिल जाता है। और श्रेयस का अर्थ है परम कल्याणकारी। तो तुरंत सुखकारी और परम कल्याणकारी, ये जो परम कल्याणकारी है इसमें जैसे कि हम आके चैंटिंग शुरू करते हैं हरे कृष्णा में जब आते हैं, तो ऐसा नहीं कि कई लोग क्योंकि बाहर की लाइफ में इतना सब कुछ इंस्टेंट एक्सपीरियंस किए, सब कुछ इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट ढोकला, सब कुछ होता है इंस्टेंट इडली, इंस्टेंट सब कुछ इंस्टेंट। तो ये इंस्टेंट और परम कल्याणकारी में अंतर, जैसे कि आजकल किचन में होता ना माइक्रोवेव, इंस्टेंटली सब गर्म हो जाता, बस 30 सेकेंड्स, एक मिनट में सब कुछ गर्म हो गया। और एक है चूल्हा जलाओ, हाँ पिछले जमाने में जो चूल्हा जलाते थे तो हमको लगता होगा कि अरे चूल्हा क्या, वो कितने पिछड़े हुए लोग थे, वो चूल्हा जलाते थे। लेकिन आप देखोगे मेरे को बहुत से जो बड़े बड़े आजकल के जो सेलिब्रिटीज हैं वो लोग चूल्हे पे बना हुआ खाते हैं, क्योंकि वो माइक्रोवेव में गर्म करने से सारा रेडिएशन उसके अंदर जाता है और उनके सब कैंसरस सेल्स बन रहे हैं। तो ये है प्रेयस, लेकिन कल्याणकारी तो छोड़ दो, परम कल्याणकारी तो छोड़ दो, कल्याणकारी भी नहीं है। तो ये जो तुरंत सुखकारी और परम कल्याणकारी, तो इसमें अर्जुन अब भगवान से, देखिए उनका लेवल इतना आगे बढ़ चुका है कि फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन केवल प्रेयस के विषय में सोच रहे थे कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा तो तुरंत मेरे को क्या क्या फायदा है। और भगवान ने जो दूसरे अध्याय में अर्जुन के इंटेलिजेंस को शार्पन कर दिया थोड़ा, है कि नहीं, वो सुनने से भी इंटेलिजेंस शार्पन होता है हमारा। जैसे कि अभी आप लोग जो इतने समय से गीतामृत कार्यक्रम अटेंड कर रहे हो तो आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे कि अभी जो आप प्रश्न पूछते हो भगवद गीता के संदर्भ में वो ऐसे प्रश्न नहीं होंगे जैसे बाहर लोग प्रश्न पूछते हैं कि कितने की है भगवद गीता, क्यों पैसा क्यों रखा है इसके ऊपर, वहां से शुरू कर दे, अंदर तो खोला ही नहीं अभी तक भगवद गीता। तो बाहर के लोगों का स्पिरिचुअल इंक्वायरी भी देखिए क्या लेवल रहता है उनका। जैसे प्रयाग में, ये कुछ 8-10 साल पहले की बात है, कुंभ मेला जब वहां पर हुआ था तो अपना इस्कॉन का वहां पे स्टॉल लगा था, तो एक स्टॉल था क्वेश्चन आंसर्स बूथ। तो अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स बूथ में तिलक लगाकर ब्रह्मचारी सैफ्रॉन में बैठे हुए हैं और ऊपर लगा है क्वेश्चन आंसर्स बूथ, तो लोग आ रहे हैं, देखा क्वेश्चन आंसर्स बूथ, तो आके पूछते हैं अच्छा वो घाट पे मेरा एक बटवा खो गया तो आप बता सकते हो कि कुछ मिला या किसी ने यहां पे आके दिया। अब देखो क्या लेवल है उनके क्वेश्चंस का, कि ये नहीं कि वो खुद खोए हुए हैं, बटवा छोड़ दो हम खुद इस पूरे, तो वो ब्रह्मचारी ने ऐसे ही आंसर दिया अरे आप बटवा छोड़ो आपको पता है आप खोए हुए, मैं खोया तो आज तक कभी उसको किसी ने ऐसा नहीं कहा था। जैसे प्रभुपाद का एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, एक कुछ क्लास में मैं बता रहा था ये एग्जाम्पल, एक मॉर्निंग स्टार रैंच करके एक हिप्पीज का एक कम्यून था अमेरिका में पहाड़ों पे, वो बहुत ही अजीबोगरीब हिप्पी कम्यून था जिसका नाम था मॉर्निंग स्टार रैंच, जहाँ पर सारे हिप्पी सब नग्न घूमते थे। तो वहाँ प्रभुपाद का एक प्रोग्राम अरेंज किया गया। सोचो प्रभुपाद को कहाँ का प्रोग्राम के लिए लेके गए, तो वो पहाड़ पर प्रभुपाद को लेके गए। प्रभुपाद जैसे ही वहां पे पहुंचे तो सारे हिप्पी नंग धड़ंग घूम रहे हैं। तो प्रभुपाद आश्चर्यचकित हो गए कि क्या सभ्यता है। जैसे ही प्रभुपाद वो गेट से एंट्री किए तो एक हिप्पी पूरा नग्न वो गार्डनिंग कर रहा है। तो प्रभुपाद ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम प्लांटिंग पोटेटोस, ये आंसर दिया उसने। प्रभुपाद ने, नो, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ लाइक दिस? ये हिप्पी को जिंदगी में किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं था कि व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ। तो खाली प्रभुपाद ने एक क्वेश्चन उसको पूछा, उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन 10 गुना ऊपर बढ़ गया और वो हिप्पी इतना ज्यादा जिज्ञासु हुआ जानने के लिए कि आई नेवर थॉट व्हाट एम आई डूइंग विथ माय लाइफ। और वो जो वहां पे प्रभुपाद ने प्रवचन दिया उसके पश्चात वो एक हिप्पी उसने कपड़े पहन के वो प्रभुपाद के साथ नीचे मंदिर में आए और आगे चल के वो बहुत बड़े सन्यासी बने। तो ये जो क्वेश्चन प्रभुपाद ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, तभी हम लोग अगर हरे कृष्णा में नहीं आते तो हम लोग भी ऐसे ही आंसर देते, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग इंजीनियरिंग, आई एम डूइंग मेडिसिन, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, हाउ आर यू, वेरी नाइस, अरे वेरी नाइस क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से घिरे हुए, वेरी नाइस क्या। तो ये सब, ये सारे जो यहां पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि एक है प्रेयस, हमारे क्वेश्चंस प्रेयस, प्रेयस की कैटेगरी में क्या रहते हैं कि तुरंत सुखकारी क्या क्या मिल रहा है हमको, बस उसके क्वेश्चंस। लेकिन परम कल्याणकारी जो श्रेयस्कर हमारे लिए, वो अर्जुन हमें सिखा रहे हैं। तो यदि हम ये जो दो लाइन आज के श्लोक की लें, जहां पर अंतिम लाइन में अर्जुन ने ये न श्रेय अहम आपनुयाम ये कहा, ये पूछा, और ये क्या कहा, व्यामिश्रेणे व वाक्य न बुद्धिम मोहय सीव में। तो ये दोनों का कनेक्शन ये है कि जैसे एक वैष्णव आचार्य, उन्होंने ये बताया कि भगवान ने जानबूझ के दूसरे अध्याय में बहुत कुछ एक साथ अर्जुन को दिया ताकि अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो, और उस कंफ्यूजन में फिर अर्जुन पूछे कि मुझे अल्टीमेटली क्या है वो बताओ। तो इसलिए ये जो दो लाइन है ये भगवान का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, ये जो अर्जुन कहे, एक तो मेरी बुद्धि मोहित हो रही है इसलिए तदेकम वाक्यम निश्चित्य, निश्चित रूप से आप एक बताइए मुझे कुछ, और वो क्या, कि श्रेयस्कर, सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो कि 5000 वर्ष पूर्व भगवद गीता अर्जुन को सुनाए, जिसके अंदर अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब भक्ति योग सब कुछ सुना है, लेकिन अंत में भगवान का संदेश क्या था, सर्वधर्मान परित्यज्य, श्रेयस्कर तुम्हारे लिए क्या है कि तुम मेरी भक्ति में लगो, वो था भगवान का तदेकम वाक्यम निश्चित्य। और वही जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया कि कलयुग में तो ऑलरेडी लोग इतने कंफ्यूज हैं, इतने कंफ्यूज्ड हैं, तो यदि मैं इनको कहूंगा, जैसे कई बार आप देखो
कई लोग कहते हैं कि जो मन में आए करो, खाओ, जो मन में आए देखो, यतो मत ततो पत, तो उसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रभुपाद सिंपल एग्जाम्पल देते थे कि आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन जाओ और बोलो कि मुझे दिल्ली जाना है, और वहां पर वो स्टेशन मास्टर बोले कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, बैठ जाओ किधर। अरे लेकिन दिल्ली जाने वाली कौन सी, सभी दिल्ली जाएंगे कि कभी ना कभी तो पहुंचेगी। तो आप सोचिए कितना कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। लेकिन जब आपको बताया जाता है कि ये ट्रेन नंबर कितना स्पेसिफिक रहता है, वो सब चीज में हम कितने स्पेसिफिक रहते हैं कि ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, उसका प्लेटफॉर्म, आपका बोगी नंबर, आपका बर्थ नंबर, वो नाम के साथ फिर बाद में चार्ट में है कि नहीं, फिर टीसी आके वापस क्रॉस चेक करता है, डबल चेक करता है, आपको देखता भी, आजकल तो आई कार्ड भी मांगते हैं, देखते फोटो के साथ यही आदमी बैठा है कि नहीं। लेकिन जब आध्यात्म की बात आती है, जो मन में आए करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरि नाम एव केवलम, एक ही चीज दी। इसलिए जब पूछते हैं ना कि आप लोग ये खाली हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप करते, बोले अरे इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 10 मंत्र और दे देते तो लोगों के क्या हाल होता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी जैसे वो टीसी डबल चेक करता है वैसे डबल चेक किया। उस श्लोक में क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने, हरि नाम, हरि नाम तीन बार, एक तो एव केवलम, इतना ही नहीं काफी, न अस्तेव न अस्तेव न अस्तेव, और कोई उपाय नहीं, बाकी किधर मत जाना, कोई दुकान में मत जाना। जैसे कोई एडवर्टाइज ऐसे ही करता है ना, यही लो यही लो यही लो, और फिर कहे तो ये चीज दूसरी दुकान नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा नहीं ठीक है तो। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो इतना इजी कर दिया, नो कंफ्यूजन, कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं। और जितने सारे मंत्र यहां वहां जितने यज्ञ है सबको इकट्ठा कर एक पलड़े में रखो, यह हरे कृष्ण महामंत्र उससे भी भारी निकलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सब इनके अंदर ऑलरेडी फिटेड है, सारे मंत्र यज्ञ तप दान इत्यादि तीर्थयाटन सब कुछ इसके अंदर डाल दिया भगवान। तो यहां पर हम ये समझेंगे कि चाहे अध्यात्म हो चाहे भौतिकवाद हो, ये बुद्धि मोहित कब होती है हमारी, जब हमारे सामने वैरायटी, जितना वैरायटी हमारे सामने आएगा, जैसे अर्जुन बोले कि आपने सेकंड चैप्टर में इतना वैरायटी मुझे सुना दिया 72 श्लोकों में कि अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि सारे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं। तो देखो भगवान उसके द्वारा, अर्जुन के प्रश्नों के द्वारा आजकल लोग किस चीज से कंफ्यूज्ड रहते हैं, लोग ज्यादा कंफ्यूज्ड किससे हैं। जैसे कि यूके में एक पीएचडी कर रहा एक व्यक्ति इस्कॉन में आना शुरू किया, तो वो मुझे बता रहा था कि उन्होंने ये एनालिसिस किया है कि जब कोई बड़े स्टोर्स होते हैं ना, ये जैसे हमारे यहाँ बिग बाजार वगैरह है, तो उधर वो टेस्को, सेंसबरीज और यूएस में वॉलमार्ट, ये सब बड़े बड़े स्टोर्स, तो उसके अंदर कोई जाता है क्योंकि वहां पर एक छत के अंदर सब कुछ आप खरीद सकते, कुछ भी, एक पेन से लेके आप पूरा घर ऑर्डर कर सकते। तो इसके अंदर जब वो लोग एंट्री करते हैं तो उन्होंने चेक किया कि वो जो कस्टमर्स जाते हैं वहां पे, जब बाहर आते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इतना वैरायटी देखा तो कंफ्यूज हो जाते हैं। दही सोचिए, पहले के जमाने दही तो घर पे जमा लेते थे, बाहर भी जाने की जरूरत नहीं। अभी वहां पर दही के 10 वैरायटी हैं, सोचो दही के 10 वैरायटी क्या होंगे, योगर्ट विद क्रीम, योगर्ट विदाउट क्रीम, योगर्ट विथ पाइनएप्पल फ्लेवर, योगर्ट विथ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, योगर्ट विद पाइनएप्पल अच्छा है कि स्ट्रॉबेरी, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो गया। और वो लोग ऐसा अट्रैक्टिव पैकेजिंग करते हैं, पाइनएप्पल का ऐसा दिखता है, स्ट्रॉबेरी का ऐसा दिखता है, अरे मेरे को तो ये भी अच्छा लगे, तो दोनों लोग क्या तीनों, फिर वो पत्नी मती चारों ले लो। तो फिर वो कहती है कि चारों ले लो, तो अब वो पहले उसका कंफ्यूजन था कि दोनों में से कौन सा एक लूं, अब उसने कह दिया चारों ले लो, तो इसका भी स्ट्रेस लेवल दूसरे इसमें चला गया कि इसका पैसा तो मेरे को भरना है ना। फिर वो बोलता है दिमाग का दही मत जमा। तो इसने, पत्नी बोल रही है चार फ्लेवर दही का, इसने पांचवा फ्लेवर दे दिया। तो वो लोग का ये एनालिसिस है कि कैसे ये अलग अलग लेवल्स पे उनका स्ट्रेस आजकल किन कारणों की वजह से बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि हमारे दो प्रकार के डिमांड्स हैं सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में। एक है हमारा शरीर, और शरीर मतलब मन भी उसके अंदर, तो भी भौतिकी है, बॉडी एंड माइंड, और एक है हमारा आत्मा। तो जहां तक बॉडी है, ये रिसेंटली एक स्टैटिस्टिक्स आया, ये खाली इंडिया का है, अभी आप सामने जो पढ़ रहे हैं ना, स्टार्टलिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमरिज्म इन इंडिया, हियर्स हाउ मच इंडियंस बाय एवरी सिंगल डे। यहां से समझ में आ रहा है कि बुद्धि मोह सीव में, जो अर्जुन बोल रहे हैं ना कि कैसे बुद्धि मोहित होती है, तो ये खाली एक कंट्री में रोज लोग कितना खरीद रहे हैं। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर 57.6 लाख बॉटल्स, वो भी कितना 650 ml की एवरी डे। गोल्ड इतना केजी, 18 kg एवरी डे। पेयर ऑफ जीन्स 72,329 पेयर्स एवरी डे। एयर टिकट्स 95,890 एवरी डे। वॉशिंग मशीन्स 4,274 एवरी डे। इंडियंस गोइंग अब्रॉड 24,657 एवरी डे। टीवीज परचेज 22,740 एवरी डे। फ्लैट स्क्रीन्स 9,8733 एवरी डे। रेफ्रिजरेटर्स 9,589 एवरी डे। बियर बॉटल्स 86 लाख बॉटल्स एवरी डे। सोप्स 150 लाख बार सोप्स, सब ग्राम के साथ बताया कितने ग्राम का खरीदते हैं। मूवी टिकट्स 1.04 करोड़ एवरी डे, ये सब एवरी डे का ध्यान में रखें, ऊपर लिखा हुआ एवरी डे। कार्स 2,416 एवरी डे। सिगरेट्स 26.02 करोड़ स्टिक्स एवरी डे। तो सोचिए आप अगर नहीं भी पी रहे तो वातावरण में कितना धुआं फैला हुआ है ऑलरेडी। बाइक्स 15,932 एवरी डे। स्कूटर्स 19,332 एवरी डे। और ये लास्ट देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स 1.96 करोड़ बॉटल्स एवरी डे। और इन सब का सबसे ज्यादा परचेज किसका हो रहा है इसके बाद? एस्प्रिन। कितना है? 28.83 करोड़ एवरी डे। तो एंड रिजल्ट क्या है? लोग सबसे ज्यादा क्या खरीद रहे? सरदर्द ठीक करने के लिए, जो इधर दही जमा हुआ है उसको दूध बनाने के लिए। व्हाट इज द एंड रिजल्ट? व्हाट पीपल आर बाइंग द मोस्ट इज मेडिसिंस। क्योंकि ये जो पिछला सारा लिस्ट हमने देखा, उसके वजह से स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होके जो जो तकलीफें होती है, और इसलिए बताया गया है द मोस्ट डेडली इज नॉट एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, The most deadly is acquired intelligence deficiency, जिसके वजह से ये आजकल जो मानव समाज में problems हो रहे हैं। तो ये है जहां तक प्रेयस का जो जीवन है, तुरंत सुखकारी, उसके लिए हम मानव समाज ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, कितने मल्टीनेशनल कंपनीज ये वो क्या कुछ नहीं बना रहे हैं, क्या कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे एक मेरा फ्रेंड वो इस कंपनी में कौन सा कोई है ना ये कॉस्मेटिक कंपनी है बहुत बड़ी, उसमें है वो। तो वो जब मुझसे मिला तो उसने देखा यार तेरे जैसे अगर हो गए तो हमारी तो कंपनी ठप पड़ जाएगी। तो मैंने भी कहा मैं भी शैंपू इस्तेमाल करता हूं। बोला तू शैंपू इस्तेमाल कर? बोला ऑल क्लियर। ऑल क्लियर शैंपू। तो प्रभुपाद ने भी यही बोला दैट इफ एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स फॉलोइंग द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स देन वी डोंट नीड सच ह्यूज मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन। Life will become so simple and stress-free, and then we'll finally acquire intelligence, not deficient of intelligence. लेकिन हम देखते हैं कि विशेष रूप से इंडिया में, इसलिए मैंने स्टैटिस्टिक्स इंडिया का दिखाया, ये सारा वर्ल्ड का भी दिखा सकते थे लेकिन वो फिर वो स्क्रीन में भी फिट नहीं होता था, वो फिगर्स इतने बाहर जाते थे। तो इंडिया का मैं क्यों दिखाया, क्योंकि इसके साथ साथ बुद्धि मोहित एक और तरीके से इंडिया में होती है। अलग अलग इसका भी सुपरमार्केट है कि मंगलवार को ये, बुधवार को ये, शनिवार को ये, तो सब जो भी कुछ अलग अलग कितने सारे देवी देवता झाड़फूंक बाबा गुरु इत्यादि पता नहीं क्या क्या। तो कैसे तो मेरा ये ठीक हो जाए वो ठीक, ये क्या है, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई बोन स्पेशलिस्ट है, कोई ये स्पेशलिस्ट है, वैसे हमने इनको भी स्पेशलिस्ट बना दिया है कि ये मेरी साढ़े सात ही ठीक करेंगे, ये मेरी ना साढ़े नौ हो रहा है अभी उसको ठीक करेंगे, फिर सवा नौ हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है उसको ठीक करेंगे। तो उसमें उसमें भी व्यक्ति मोहित हो रहा है क्योंकि फिर उसको समझ में नहीं आता है, समझ में इसलिए नहीं आता है, जैसे एक एक साउथ इंडियन फैमिली के घर में मैंने देखा उनका अल्टर, मतलब हमारा जो अल्टर है उसका आधा घर के अंदर, इतना बड़ा अल्टर और उसके अंदर कितने सारे, ये तो जितने हमें स्क्रीन में फिट हो सके उतने ये फोटोज आपको दिखा रहे हैं, उसमें तो कितने सारे फोटोज यहाँ वहाँ के समझ में भी नहीं आ रहे कौन से लोग के कौन से देवता हैं, सबके फोटोज लगा दिए। मैंने कहा फिर आप कैसे वर्शिप कर? बोला नहीं अभी अगरबत्ती कैसे समझ में आएगा कौन कहाँ पर क्या है, तो सबको एक साथ सामूहिक रूप से घुमा देते कि जहां जहां आप लोग स्थित हो आप एक्सेप्ट कर लो अपना अपना शेयर। तो सोचिए कि उसके अंदर अगर व्यक्ति उसको संतुष्ट करने जा रहे हैं तो कितना उसके अंदर भी स्ट्रेस, अध्यात्म में भी स्ट्रेस आ रहा है लोगों के अंदर कि इसको प्रसन्न करेंगे, अगर इसको थोड़ा ज्यादा अगरबत्ती एक दिखा दिया तो साइड वाले गुस्सा हो जाएंगे, तो फिर अगर मैं ना सोमवार को इस मंदिर में थोड़ा आधे घंटे ज्यादा रुक गया तो फिर शनिवार को अगर मैं किसी कारण के वजह से आधा घंटा ज्यादा नहीं रुका तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर इसलिए वो फिर व्यमाश्रित्व बुद्धिम अलग अलग उसके वजह से वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों में ये सब कुछ बताने के बाद हमको बताया है कि हमारे आत्मा का डिमांड क्या है उसको पहले ढूंढो, क्योंकि वो पावर हाउस है, वो है हमारा असली परिचय। और इसलिए भगवद गीता, ये वेदांत सूत्र, ये सारे जो सारे ग्रंथ उपनिषद को लो, उसमें हमारे आत्मा का डिमांड एक ही बताया गया है और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो सब जो उपनिषद ग्रंथ इत्यादि इनका निचोड़ क्या है, सैटिस्फाई द सोल। आत्मा यदि संतुष्ट नहीं है तो मन के लिए और शरीर के लिए हम कितना भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले, कितने भी तप यज्ञ दान इत्यादि करते रहें, इफ द सोल इज नॉट सैटिस्फाइड इनसाइड, देन ऑल ऑफ दिस इज सिंपली डेकोरेशंस और कॉस्मेटिक अरेंजमेंट्स है इससे। तो इसलिए आत्मा को यदि सही उसका डिमांड सप्लाई करना है तो वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और वो अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं कि परम श्रेयस्कर क्या है, तो पांच अर्थ श्रेय के बताए हैं। पहला अर्थ परम सुरक्षा। अब देखिए यहां जब अर्जुन ने पूछा है कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है, इतना नहीं कि श्रेयस्कर क्या है बल्कि सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है, इसलिए परम हर अर्थ में परम लगाया गया है। परम सुरक्षा, परम शांति, परम आनंद, परम सौभाग्य और अंत में परम धाम। तो यदि हमें अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर सही मायने में समझना है तो भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन के आज के प्रश्न का उत्तर इन पांच अर्थों के द्वारा दिया है। जब तक कि हम हमारे मनुष्य जीवन में सुरक्षा, लेकिन परम सुरक्षा प्राप्त नहीं करें, परम शांति को, परम आनंद को। अब देखिए इसका भी लेवल्स है कि शांति कब प्राप्त होती है, जब हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। जैसे कि आप लोग शांति से बैठे हुए हो इस चेयर पे क्योंकि आपको मालूम है कि चेयर सुरक्षित है, आपको गिराएगी नहीं। अभी अगर मैं बोल दूं कि कोई एक चेयर का एक जो पैर है वो बहुत कमजोर, क्रैक है, वो गिरने वाला है, तो अचानक आपकी शांति भंग हो जाएगी, तो कहीं मेरा वाला तो नहीं है। तो सुरक्षा से शांति, और शांति जब प्राप्त होगी तब जाकर आनंद प्राप्त होगा। और जब वास्तविक आनंद, कौन सा वो तुरंत सुखकारी वो जो एक्सपीरियंस है वो नहीं, परम आनंद, तब जाकर जीव परम सौभाग्यशाली बनता है, क्योंकि परम आनंद केवल भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में ही प्राप्त हो सकता है। और परम सौभाग्यशाली बनने का उसका लक्षण क्या है कि परम धाम को प्राप्त होगा। तो ये कनेक्टेड है पांचों, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, परम शब्द, जैसे कि लोग आजकल क्या चाहते हैं, परमानेंट, वो भी ऐसे ही है, परम परमानेंट, हर चीज परमानेंट चाहते हैं ना, नौकरी भी परमानेंट, घर भी परमानेंट, पति पत्नी परमानेंट चाहते हैं एक दूसरे को, तो सब कुछ परमानेंट चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि असली सर्वाधिक श्रेयस्कर किसी मनुष्य के लिए है जब ये पांच चीजें परमानेंट रूप से वो प्राप्त करे। कैसे? अपने बुद्धि को इस्तेमाल कर, और बुद्धि का इस्तेमाल वो शुरू कैसे करेगा, बाय आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। बस हमको करना क्या है इस मनुष्य जीवन में, अर्जुन ने जो किया, अर्जुन जस्ट इंप्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ हिज क्वेश्चंस एंड ही वेंट बैक होम बैक टू गॉडहेड बाय द आंसर्स। सिमिलरली वी हैव टू कीप ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आवर क्वेश्चंस, द लेवल्स ऑफ आवर क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स फॉलो द आंसर्स इन आवर लाइव्स। एंड हियर इज द फॉर्मूला which we will be having of supreme benefit, param shreya of going back home, back to Godhead, param dham. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. तो अगले श्लोक में अब भगवान बहुत प्रसन्न हुए अर्जुन से, अर्जुन के प्रश्न से, इसलिए अगला श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं भगवान अर्जुन को ये कहते हुए, हे निष्पाप अर्जुन। और उसके साथ साथ भगवान अब क्या बोलेंगे अर्जुन को, ये जानने के लिए ठीक अगले बुधवार को आप इसी समय इसी स्थान पर मौजूद हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।